हरे कृष्णा। हम लोग ये एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कृष्ण भावनामृत का इंट्रोडक्शन है एकदम नए व्यक्ति के लिए। तो हम छोटे छोटे लेक्चर भेजेंगे जिसको आप सुन करके हमारी जो भक्ति वृक्ष पुस्तक है उसके 10 अध्याय हैं उनका सारांश हम भेजेंगे, जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि हमें भक्ति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, आपको आश्चर्य होगा लेकिन मनुष्य जीवन में, अपने भौतिक जीवन में भी हम नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन करना ये मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है। पशु जीवन में व्यक्ति नियमों को समझ नहीं सकता है। जैसे आप गायों को बोलिए कि एक लाइन में जाएं, तो एक लाइन में भले ही उनको ट्रेन कर दिया जाए जाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगी कि एक लाइन में चलने में क्या लाभ होता है। तो जब हम कुछ नियम का पालन करते हैं, स्वाभाविक रूप से जरूरी नहीं है कि वो नियम हमको अच्छा लगे, लेकिन व्यक्ति भौतिक जीवन में भी इसका पालन करता है ताकि आगे उसे कुछ लाभ हो। जैसे नियम से बच्चे पढ़ते हैं ताकि आगे जाकर के उनके अच्छे नंबर आए, उनका भविष्य उज्जवल हो। लोग नौकरी करते हैं ताकि आगे जाकर के उनको धन प्राप्त हो, और धन तुरंत प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा के संग वो नौकरी करते हैं। या फिर लोग जब रास्ते पर चलते हैं, तो भारत में लोग बाएं हाथ पर चलते हैं, अमेरिका में लोग दाएं हाथ पर चलते हैं, तो ये नियम पालन करते हैं। और ये नियम हम हमेशा स्वयं नहीं बनाते हैं, जो उच्चतर व्यक्ति होते हैं वो हम बनाते हैं। तो अगर आप जानते, आप समझ सकते हो, इस बात से आप सहमत भी होंगे कि यदि इंसानों के जीवन में, इंसानों के समाज में कोई नियम नहीं हो तो वो पशुओं की तरह हो जाएगा। और जिस स्थान में, जिस देश में नियम बहुत कड़ाई से पालन नहीं होते हैं, तो वहां पे तो जंगल राज कहा जाता है। जिसके पास शक्ति होगी वो दूसरों को भोगेगा, दूसरों को नष्ट कर देगा। तो हम देखते हैं कि इंसानों के जीवन में नियमों का पालन करना ही हमारे लिए स्वभाव है। और यदि हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम पशु स्तर पे आ जाते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि पशु स्तर और मानव स्तर में अंतर क्या है। इस संबंध में महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। इंसानों में और जानवरों में चार चीजें सामान्य हैं। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना, और भय मतलब किसी अनिष्ट की आशंका से या अनिष्ट को बचाने के लिए प्रयास करना। तो ये चार चीजें इंसानों और जानवरों में समान है। तो वो क्या चीज है जो इंसानों को जानवर से अलग बनाती है? बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर आप या हम सब लोग इस तथ्य को ना सुने, इस श्लोक को ना सुने, इसके बारे में ना जाने, तो पूरा जीवन हम आहार निद्रा भय और मैथुन की क्रियाओं में लगे रहेंगे या फिर उन क्रियाओं में लगे रहेंगे जिनके द्वारा ये चार क्रियाएं अच्छी प्रकार से हों। तो ये श्लोक बोलता है क्या है वो क्रिया, वो है धर्म। धर्म का अर्थ है ईश्वर के कानून को मानना। तो जो व्यक्ति ईश्वर के कानून को नहीं मानता है वो उसका पूरा जीवन पशुतुल्य हो जाता है। तब आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है, प्रतिवाद करेगा, तो ठीक है, पशु जीवन जीने में क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है पशु की तरह जीवन जीने में? तो आप देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम लोग इन पार्श्विक प्रवृत्तियों में ही प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो क्या वाकई हमको अधिक सुख प्राप्त होता है, ये सोचना चाहिए। जैसे हम एक बहुत सुंदर भवन में या होटल में खाना खा सकते हैं, और एक कुत्ता एक जमीन पर बैठ करके अपनी हड्डी चबा रहा है या कुछ भी खा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके खाने का अनुभव हमारे खाने के अनुभव से अधिक अच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इसका प्रतिवाद ना करके इस पर विचार करने का प्रयास कीजिएगा। जो खाने का सुख है वो कुत्ते को उतना ही मिलता है जितना कि मुझे होटल में खाने को मिलता है। थोड़ा सा मैं पॉलिश कर सकता हूँ। और अगर आपको उसमें ऑब्जेक्शन है, तो मान लीजिए कि आलू का पराठा आप होटल में खाते हैं और आलू का पराठा अपने घर में खाते हैं, दोनों ही जगह जो स्वाद है, अगर वो एक ही तरह से अच्छी तरह से बनाया जाए तो स्वाद में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए हमने खाली उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया, पॉलिश मतलब थोड़ा रिफाइन कर दिया है, लेकिन क्रिया जो खाने की है वो वही रहती है, और उससे जो सुख मिलता है वो भी उतना ही मिलता है जितना कि अन्य रूप से मिले। एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे लोहे की कटोरी में आप दाल खाएं चाहे सोने की कटोरी में दाल खाएं, दाल का स्वाद वही रहता है और ये कोई खास अंतर नहीं पड़ता इसमें। और ये तो हम समझ ही सकते हैं कि पहले जमाने में लोग सोने की थाली में खाते थे, आज हम लोग स्टील की थाली में खाते हैं, तो खाने का जो प्रभाव है, खाने का स्वाद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम नींद की बात करें, हम लोग नींद के लिए कितनी कितनी व्यवस्था करते हैं, एसी लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक बार गहरी नींद आ जाए व्यक्ति को तो उसको मालूम ही नहीं चलता है कि वो एसी रूम में सो रहा है, वो जंगल में सो रहा है। ये नहीं समझ में आता उसको कि वो जमीन पे सो रहा है कि वो बेड पे सो रहा है। अब बेड खरीदने में कितना प्रयत्न होता है, कितना कितना हम लोग प्रयास करते हैं, कितना धन खर्च होता है, कितनी मानव जीवन की शक्ति खर्च होती है, लेकिन नींद का सुख वही रहा जो कि जमीन पे सोने पे आता है। जमीन पे आप थोड़ा सा गद्दा बिछा के सो जाइए तो उतना ही सुख मिलेगा। शायद आप प्रतिवाद करेंगे, लेकिन देखिए एक बार ऐसा हुआ, हम लोग साधु लोग हैं तो हम लोग हल्का सा गद्दा हल्का सा मैट बिछा के सो जाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आए हमारे आश्रम में, गेस्ट रूम में रुके थे, वो BMW में आए थे। तो BMW में आए भाई, पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मेरे रूम पे वो मिलने के लिए आए रात में, मैंने कहा चलिए आपके लिए मैट बिछा देता हूँ तो आप सो जाइएगा और आपको सुबह मंगल आरती के लिए उठने में बहुत सुविधा होगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं प्रभु जी, सुबह तो बड़ी दिक्कत होती है उठने में। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर आप जमीन पे सोते हैं मैट बिछाकर तो आपको नींद अच्छी नहीं आनी चाहिए, आप उठने में सुविधा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो उतना ही लाभ मिलेगा, तो यानी कि हमें तो उतनी ही नींद आएगी। तो अर्थात जो नींद का सुख है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो व्यक्ति ने क्यों इतनी मेहनत करी इतने सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए? आप कहेंगे क्या आप हमको बैकवर्ड करना चाहते हैं? नहीं, हमको बैकवर्ड नहीं करना चाहते हैं, हम आप खाली ये बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में भौतिक वस्तु में फॉरवर्ड होने से कोई आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे आपको सब्जी खरीदने जाएं या कोई भी सब्जी कोई वस्तु खरीदने जाएं तो जो मूल्य दे रहे हैं उसके अनुरूप तो वस्तु प्रतिदान में मिलना चाहिए ना। अगर आप 100 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं तो 100 रुपए का मूल्य मिलना चाहिए, और 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो 10 रुपए का मूल्य मिलना चाहिए। अब यदि आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं और आपको 10 रुपए का मूल्य मिल रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि इतनी शक्ति हम लगा रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन को बढ़ाने के लिए, लेकिन सुख उतना ही मिल रहा है जितना कि एक गरीब व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को मिल रहा है। यहां तक कि एक जानवर को भी उतना ही सुख मिल रहा है। और आप भी सोचिए कि क्या खाने में हम हाथी से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? क्या हम लोग सोने में एक जो पोलर बियर है जो 6 महीने सोता है उससे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मैथुन के बारे में चर्चा करें तो कोई इंसान एक होटल में मैथुन कर सकता है या अपने घर में शांति से मैथुन कर सकता है, और जानवर सबके सामने कर रहा है या फिर रोड पे कर रहा है, तो जो मैथुन का सुख है वो तो वही उतना ही है। और अगर रक्षा करने की बात करें तो जो जानवर हैं वो अपने हाथ नाखूनों से, दांतों से रक्षा करते हैं, और हम न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल से रक्षा करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रक्षा का जो प्रवृत्ति है वो दोनों में बराबर है। तो यानी कि इन सब चीजों में, आहार में, निद्रा में, भय और मैथुन में, इसको इसमें पशुओं से हम से कंपटीशन करें तो उसके बावजूद भी हम पशु ही रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आप कहेंगे कि इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पशुओं में एक दूसरे का शोषण करने की भावना रहती है, एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है, उसी प्रकार से अगर इंसान लोग पाश्विक स्तर पर आ जाते हैं, पाश्विक चेतना से युक्त हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे को खाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को शोषण करने का प्रयास करेंगे। और ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं कि जगत में इस प्रकार से शोषण हो ही रहा है, संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। तो यानी कि सामाजिक दृष्टि से भी देखें, आप ही देखिए कि अगर एक रूम में 10-15 कुत्तों को एक साथ खाना खिला करके रख दिया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो शांति से रहेंगे। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में इंसान भी अगर सुख सुविधा से संपन्न हो भी, लेकिन अगर उनकी प्रवृत्ति पाश्विक ही है तो एक दूसरे को काटेंगे ही, एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे ही। इसलिए आवश्यक है कि इंसान धर्म का आचरण करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है ईश्वर के नियमों को पालन करना, और ईश्वर कौन है उसके बारे में हम आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात तो इस समझ में आना चाहिए कि धर्म का मतलब है ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना। नियम हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते, जैसे कि रोड के जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ट्रैफिक के नियम बनाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक का कोई नियम नहीं होगा। तो नियम बनाने वाली गवर्नमेंट होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सभी समाज के लिए, इंसानों के लिए भगवान ने कुछ नियम दिए हैं, और उन नियम का जब हम पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो मानव जीवन जी सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि चाहे कोई भी जानवर हो, कितना भी समझाया जाए, वो धर्म के बारे में नहीं समझ सकता है। तो ये बुद्धि इंसानों को दी गई है, ये गिफ्ट भगवान ने इंसानों को दिया गया है कि धर्म को समझ सकें, धर्म का आचरण कर सकें और उससे आगे लाभ उठा सकें। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम नियम का पालन करते हैं, जैसे कि हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं, तो हम पुलिस के दंड से बचते हैं एक बात, और साथ साथ हमको आगे एक अच्छा पुरस्कार भी मिलता है सरकार की तरफ से। उसी प्रकार से जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो हम पाप से बचते हैं और महान पुण्य मिलता है जिससे हमारी आगे सद्गति होती है। सद्गति क्या होती है आज हम नहीं समझा रहे, वो आगे की हम क्लासेस में सबको समझाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मानव जीवन की एक और सुविधा है जो कि जानवरों में नहीं है, उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि मैं कौन हूं, मैं क्या, ये मैं शरीर हूं और मैं इस शरीर में रहते हुए दुख क्यों भोग रहा हूं। वो क्या दुख है वो उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, लेकिन वो मैं दुख क्यों भोग रहा हूं ये प्रश्न इंसान कर सकता है। जैसे आप समझ सकते हो कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम बीमार पड़े क्यों, हम प्रयास करते हैं कि दोबारा से वो बीमारी ना हो। मेरा अनुभव है, हम लोग गौशाला के इंचार्ज हैं, तो गौशाला में हम देखते हैं कि जब गायों को कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, तो जब उनको हम दवा देने का प्रयास करते हैं तो वो दवा उनको बहुत, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको दवा दी जा रही है, उनके लिए हित के लिए दिया जा रहा है, और वो बहुत प्रतिरोध करती है। तो 10-12 ग्वाले लगते हैं गाय को कुछ इंजेक्शन देने के लिए या कुछ भी दवा देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पशु भी दुख भोगते हैं, लेकिन वो कभी प्रश्न नहीं कर सकते कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं और उस दुख का प्रतिवाद मैं कैसे कर सकता हूं, प्रतिकार कैसे कर सकता हूं। और हम लोग भी प्रायः जब भक्ति नहीं करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, तो दुख भोगते रहते हैं और दुखों की निवृत्ति करते रहते हैं। थोड़ी मात्रा में अगर दुखों की निवृत्ति हो जाए तो हम सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, तो उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान के जीवन में व्यक्ति को समझना है कि नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि मेरा स्वार्थ है या मेरा परमार्थ जो है वो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, जिसके द्वारा मेरे सारे दुखों का अंत हो जाए। तो इस प्रकार की जिज्ञासा केवल व्यक्ति मानव जीवन में कर सकता है। और अगर इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, मैंने कि भगवान के बारे में जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान से मेरा क्या संबंध है और उस संबंध को मैं कैसे जागृत कर सकता हूँ, अगर ये जिज्ञासा से विहीन है व्यक्ति, तो क्षमा कीजिएगा लेकिन वो व्यक्ति पशु की तरह ही है। इसे द्विपद पशु कहते हैं, दो पैरों पर चलने वाला पशु। तो क्या हम ऐसा बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहता, ये हमारी चॉइस है। हम शास्त्र तो केवल हमको प्रेरणा दे सकते हैं कि और शिक्षा दे सकते हैं कि हमें इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी हमारी चॉइस है कि हम पशु की तरह जीवन जीना चाहते हैं या इंसान की तरह जीना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हमें कौन से दुखों को भोग रहे हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा।